सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः यार्ज्ञानशक्तिकोटिसूर्यरण्णुमीरिदे मत्तु यार्दिव्यध्वनियुलोकहितवमाडिवे मूरुलोकदल्लि यार्कीर्तिव्याप्तवागिवे अन्थदेवदेवरल्लि नन्न कलिवागिवे अंथदेवदेवरल्लि नन्न तलियुबागिवे पंच परमिष्टि भगवान की अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की सांसारिक जीवन में गृहस्थ आवश्यक हिंसा से कहीं ज़्यादा अनावश्यक हिंसा करता है, नहीं चाहते हुए भी वह होता रहता है। अज्ञात अवस्था से, ज्ञान न होने के कारण से इस प्रकार की हिंसा होना स्वाभाविक है। जब ज्ञान आ जाता है, संयम की ओर रुचि बढ़ जाती है, पाप से भय उत्पन्न होता है, उस वक्त ऑटोमेटिक अनावश्यक हिंसाएं छूटने लगती हैं और आवश्यक आवश्यक रह जाता है। अनावश्यक को सर्वप्रथम त्यागने का उपदेश है, आवश्यक को धीरे धीरे कम करते हुए संपूर्ण हिंसा मात्र से, आवश्यक से भी और अनावश्यक से भी दोनों से मुक्त होने का उपदेश दिया है। जिनागम प्रवेश पेज नंबर 74। अनर्थ दंड वृत्ति के जो पांच भेद है उसकी चर्चा चल रही थी। ये पांच भेद हैं पापोपदेश, हिंसादान, अपध्यान, प्रमादचर्या और दुश्रुति। ये पांच भेद अनर्थ दंड वृत्ति के ये पांच भेद हैं। खोटे व्यापार आदि पाप क्रियाओं का उपदेश देना जिसमें हिंसा होती है उसी को उपदेश में देना, प्रेरणा देना, करना कराना इत्यादि, ये पापोपदेश है। हिंसा दान, जिन वस्तुओं को देने से हिंसा हो सकती है, जीवों का घात हो सकता है और उसका भागीदार हम दान देने वाले भी हो सकते हैं और सामने वाला तो होता ही है, क्योंकि उसका प्रयोग अपनी वस्तु को करेगा, इसलिए हिंसा होना स्वाभाविक है। इस कारण द्वितीय भेद में हिंसा दान से भी बचने को कहा है। यहाँ पर ये नहीं सोचना चाहिए, अति भी विचार नहीं करना और इति भी विचार नहीं करना। जो सांसारिक क्रियाएं होती हैं, जो आप जिस क्षेत्र में काम करते हैं, जिस क्षेत्र में व्यवसाय करते हैं, उद्योग करते हैं, उसमें आप किस किस वस्तु को लेकर के हिंसा दान से बच सकते हैं, उससे बचना चाहिए। जिन जिन वस्तुओं का संकल्प किया जाता है कि मैं इस वस्तु को दूसरे को कृतकारी तन्मोदना से भी नहीं दूंगा, तो वह व्रत के कोटि में आ गया। और जिसका छोड़ना आपको संभव नहीं है, जिस वस्तु को ऐसा संकल्प लेना संभव नहीं है, उसके लिए आपको उपदेश नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर उपदेश जिस वस्तु के प्रति आप दूर रहेंगे, उससे बचना चाहेंगे, स्व इच्छा से उसको व्रत के रूप में ग्रहण करेंगे, तो तत्संबंधी बचना ही चाहिए। जिसका संकल्प होता है उससे बचना चाहिए, जिसका संकल्प नहीं है और अनिवार्य रूप से वो करना ही पड़ता है, तो उसके लिए कुछ भी कहा नहीं जा रहा है। तो अनर्थ दंड वृत्ति में ये जो पांच भेद हैं, पांचों स्थान पर बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती हैं जो पापोपदेश सूक्ष्म से लेकर स्थूल तक हो सकता है, और उसमें क्या क्या छोड़ना और क्या क्या नहीं छोड़ना, ये संकल्प के साथ यदि छोड़ते हैं तो तत्संबंधी व्रत आपको माना जाएगा। और यदि आप छोड़ ही नहीं सकते, उसके बिना तो संभव ही नहीं है, तो उस बात को लेकर के प्रतिमाधारी बनना तो बहुत कठिन है, अति सोच लिया, ऐसा हो सकता है कि नहीं। और जिससे हम बच सकते थे, जिसको हम त्याग कर सकते थे, उससे भी वंचित रह गए। अनुव्रत ऐसे नहीं होते, अनुव्रत एक एक चीज को लेकर के अनुव्रत होता है। जिसको लेकर के आप वृत्ति बनना चाहते हैं, उसका आजीवन त्याग होता है। और कदाचित दोष लग जाए त्यागी हुई वस्तु को लेकर के, जिसका त्याग ही नहीं किया है उसका कोई प्रायश्चित नहीं, परंतु जिस वस्तु का त्याग किया है उसको लेकर के यदि दोष लग जाए, कदाचित हमने दे दिया, ले लिया, इस प्रकार से कुछ हुआ, तो उसका प्रतिक्रमण, प्रायश्चित इत्यादि होता है। व्रतों को समझे बिना, व्रतों का स्वरूप समझे बिना जल्दबाजी में निर्णय करके नहीं बैठना चाहिए कि प्रतिमा धारण करना बहुत कठिन है, तो मार्ग रुक जाता है, मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। क्योंकि हम क्या कर सकते थे और क्या नहीं कर सकते थे, इसको समझे बिना ही हमने ये समझ लिया कि प्रतिमाधारी नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते इसका भी विचार मालूम नहीं, और कितना बन सकते हैं ये भी मालूम नहीं है। तो प्रायः ऐसा होता है। ये क्यों होता है? हमारे विचार या तो अति पर रहते हैं या तो इति पर रहते हैं, बीच की जो व्यवस्थाएं हैं उसका ज्ञान नहीं होता। इसलिए उसको अच्छी तरह से समझना चाहिए कि हम अपने क्षेत्र में रहकर अपने जीवन में कहाँ तक क्या कर सकते हैं। एक व्यक्ति है दूसरी प्रतिमाधारी, उन्होंने भी अनर्थ दंड व्रत का त्याग किया है, आपने भी किया है, उनका पालन उत्कृष्ट हो सकता है, लेकिन आप एक जघन्य पालक भी हो सकते हैं। तो उनको देख करके अपने को ये कहना कि हमारे में दोष आ रहा है, गलत बात है, ऐसा नहीं होता है। आपने क्या त्याग किया है, कितना किया है और उसके प्रति कितना सावधान है, इससे मतलब होता है। तो ये बातें मुख्य रूप से ध्यान में रख करके ही ये अनर्थ दंड वृत्ति के संबंध में विचार करना चाहिए। अनर्थ दंड बहुत सारे होते हैं, हजारों हो सकते हैं। हमारी क्रियाएं, सांसारिक क्रियाएं, एक नहीं, दो नहीं, हजार क्रियाएं रहती हैं। उसमें अनावश्यक कौन, आवश्यक कौन, इसको पहले समझना चाहिए। और उसमें से हम आजीवन पर्यंत कौन सी वस्तु का त्याग कर सकते हैं, इसको भी समझना चाहिए। समझ समझ कर पाप को कम करने का रास्ता है ये। पाप को कम करते जाना चाहिए। कोई ऐसा भी सोच सकता है, अहिंसा व्रत को धारण करने से धर्म होता है, इतना सुन लिया तो ये तो कभी संभव नहीं। एकदम से निर्णय, क्योंकि चलते समय हिंसा, श्वासोश्वास के समय हिंसा, घर के काम करते समय हिंसा, ये कैसे संभव हमारे लिए? ये सोच कौन सी अति अति भी नहीं सोचना। आप कहाँ हैं, किस क्षेत्र में हैं, किस अवस्था में हैं, आपके कार्य क्षेत्र क्या है, उसमें मैं कितना छोड़ सकता हूँ, इससे मतलब होता है। और जितना छोड़ना है छोड़ दिया, जितना बच गया है बच गया, जो बच गया है उसका पाप लगने वाला नहीं है। जो बच गया है उसका पाप लगने वाला नहीं है, उसका भंग का भी आपको दोष नहीं आएगा। व्रत लिया है तो जिसका लिया है उसको ठोस ले लो, तो दोष उसमें लगने वाला है। बाकी में क्या, बाकी में तो अनादिकाल से दोष लग रहा है, परंतु व्रत कहाँ है उस संबंधी? जो व्रतों में दोष लगता है ये कहने के लिए वो व्रतों की कोठी में तो आएगा नहीं। जो वस्तु त्याग नहीं है वो व्रतों की कोठी में आता नहीं, और जिस वस्तु को जितने प्रमाण में आपने त्यागा है वह व्रत को कोटि में आता है। ऐसा तो आप एकासन करते समय में भी करते हैं, रस परित्याग करते समय भी करते हैं, उपवास करते समय में भी करते हैं, दो बार भी खा रहे हैं तो उस समय में भी करते हैं। आज दो बार खाना खाना है, लेकिन खाना खाते समय सभी चीजें नहीं खाना है, सभी चीजें नहीं खाना है। क्या खाना है? आज के दिन एक दो सब्जी लेना है, दस नहीं लेना है। तो दो तो खा रहे, दो का कोई व्रत नहीं है, लेकिन बाकी शेष का तो व्रत हो गया ना। इस प्रकार जितना बनता है जिस दिन उतना त्यागना और उसमें दृढ़ रहना, और कदाचित उसमें भी दोष लग गया तो प्रायश्चित, प्रतिक्रमण। इस प्रकार से इन व्रतों को अपने क्षेत्र में, अपने व्यवसाय को, अपने उद्योग को देख करके ही पालन करते हुए जाना चाहिए। स्वरूप तो यहाँ पर उत्कृष्ट लिखा जाता है, आचार्य परमेष्ठियों ने जो वर्णन किया है वो उत्कृष्ट रूप से वर्णन किया है, उसमें से आपको कितना ग्रहण करना है वो सवाल है। हम इतना करेंगे, देखो एक राजा श्रेणी का जीव पिछले भव का कथा सुनी है ना, उसने एक कव्वे के मांस का त्याग किया था, मालूम है? सुना है कभी? एक ही कव्वे के मांस को त्याग किया था, भील अवस्था में था वो, भील था, और बाकी तो मांस खाता भी था, व्यापार भी करता था, तो भी तो वृत्ति कहलाया ना। किस संबंधी वृत्ति? कव्वे के मांस संबंधी वृत्ति। अनुवृत एक ही प्रकार का नहीं होता, अनुवृत के हजार असंख्यात भेद हैं, और असंख्यात भेदों के कारण से परिणाम भी असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम कहे हैं अनुवृतों के, देशवृतों के। एक कव्वे के मांस का त्याग कर दिया और इतना दृढ़ रहा उसमें, मरण आने पर भी नहीं मैं इसको खाऊंगा नहीं और बेचूंगा भी नहीं। उस भील का जीवन उद्योग भी वही था और खाता भी था। एक कव्वे के मांस को त्याग कर दिया और वृत्ति बन गया। वृत्त का मतलब क्या? जिस वृत्त को जितने प्रमाण में लिया है उसको पालन करने का नाम व्रत। शेष व्रत हिंसा से, हिंसा को देख करके अति सोच के बैठना कि ये तो मांस खाना तो हमारे लिए छोड़ना असंभव ही है, ऐसा अगर वह भील सोच लेता तो शायद वह देवगति में नहीं जाता। व्रत महान होते हैं, व्रत अपने जीवन के सुधार के लिए होते हैं, वे छोटे हों या बड़े हों, अपने शक्ति के अनुसार उनका ग्रहण किया जाता है और उनका पालन किया जाता है। तो कहने का मतलब, प्रतिमाओं का स्वरूप चल रहा है वर्णन, इसको पढ़ करके या सुन करके अति नहीं सोचना और इति भी नहीं करना, अपनी शक्ति को देख करके दो प्रतिमा धारण करके पालन अवश्य करना चाहिए, और जितना करते हैं उसमें सावधान रहना है। जिसको कर रहे हैं, जिसको नहीं कर रहे हैं उसमें नहीं, जिसको कर रहे हैं उसमें सावधान रहना है। दो भेद हो गए थे, तीसरा भेद अपध्यान, निष्प्रयोजन किसी के जन्म मरण, हार जीत, लाभ हानि का चिंतन करना। अपध्यान, ये बहुत होता है अपध्यान। अपध्यान ने आर्थ रौद्र ध्यान, किसी के जन्म के संबंध में सुन करके बहुत हर्षित होना, मरण के संबंध में सुन करके बहुत दुखी होना, हालांकि उनसे कोई मतलब नहीं, पेपर में पढ़ लिया, हर्ष विषाद करते बैठे, कैसे लड़ाई चल रही थी भारत पाकिस्तान की, और पाकिस्तान के लोग ज्यादा मर गए और भारत के लोग कम मर गए। इनको कोई मतलब नहीं उससे, व्रति हैं, हाँ अनुमोदना दे देते हैं, ये अच्छा रहा कि वो ज्यादा मर गए, नहीं तो भारती मर जाते तो बहुत अनिष्ट होता भारत का। इस प्रकार वे मतलब है क्या नहीं है, उस उनके जन्म मरण से क्या मतलब आपको, और यदि पढ़ते भी हैं तो ऐसा अर्थ ध्यान करने से बचना चाहिए, कितने मर गए कितने हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं, अनुमोदना हो ही जाती। ये अच्छा हुआ मर गए, पेपर में आया वीरप पन्ना मर गए, क्या भाव आएगा एकदम से एकाएक ही बरे झाले बरे झाले काय भर झाले तुम्हाला तुम्हाला काय भर झाले अनुमोदना तो हो गई ना। जीव कोई पापी हो कोई पुण्यात्मा हो, उसके जन्म मरण को लेकर के हर्ष विषाद करने से भी पाप कर्मों का और पुण्य कर्मों का बंध होता रहता है। भाव भाव ही भावों का खेल है मोक्ष मार्ग। सुबह उठते ही सकाल क्यों पढ़ते आप, क्या नियम ले रखा है कि सुबह उठते ही आर्त रौद्र ध्यान एक घंटे तक करना है और बाद में धर्म ध्यान करना है, पहला दुर्ध्यान करना है एक घंटा, किस दृष्टि से पढ़ते हैं, क्या लाभ है क्या हानि है, लाभ कुछ भी नहीं है, 1-2% भी लाभ नहीं रहता उसमें, मुश्किल से निकाला जाए रिजल्ट। आज एक घंटा सकाल पढ़ा, आपको क्या लाभ मिला? हाँ, पढ़ते हैं तो उसमें हर्ष विषाद तो होता है सामान्य जनरल, मतलब कोई काम की बातें तो होती नहीं उसमें। जनरल नॉलेज करना भी क्या है आपको, ये वो सब सांसारिक ही है ना, सांसारिक है। उनको पढ़ने से क्या लाभ क्या मिला? ज्ञान मिला, केवल ज्ञान मिला क्या? क्या मति ज्ञान श्रुत ज्ञान और विकसित हुआ? सम्यक ज्ञान बढ़ा क्या? रिजल्ट केवल रौद्र ध्यान ही है उसका, और पापाश्रव ही है। और देखो इतना हानि भी है, पाप का भी बंद होता है, फिर भी हम नियम से पढ़ते हैं। एक दिन नहीं पढ़े तो मन नहीं लगता कि आज पेपर नहीं पढ़ा, आज पेपर आया ही नहीं, और नहीं भी आया है तो दूसरी जगह से ढूंढ कर ला करके पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते हैं। क्या है जीवन को सोचना है, पाप कर्मों से बचाना है या पाप कर्मों में ढकेलना है जीवन को। तो जितने इन बाह्य प्रवृत्तियों को हम कम करेंगे परिणाम उतने ही अच्छे रहेंगे। पेपर इतना बुरा होकर के भी यानी हमारे लिए कोई लाभ भी नहीं हानि भी नहीं, फुकट है, फुकट भी जाता है, एक घंटा फुकट गया और पैसा भी 4-5 रुपए फुकट गए। एक पेपर का क्या कीमत, 5 रुपए है कि नहीं? हाँ 2 रुपए, हाँ 2 रुपए चले गए, रोज 2 रुपए जा रहे हैं। तो 2 रुपए दे करके हम फुकट समय गमा रहे हैं और आर्त और रौद्र ध्यान कर रहे हैं, पाप कर्म बांध रहे हैं, इतनी हानि उठा रहे हैं। इसके लिए तो जोरदार पुरुषार्थ है, रोज मन नहीं लगता एक दिन नहीं पढ़े तो। लेकिन ऐसा ही इसकी जगह एक नियम ये लिया जाए, जिस समय मैं पेपर पढ़ता था उस समय रोज मैं 10 पेज शास्त्र पढ़ूंगा 1 घंटे तक, जिसमें आत्म कल्याण की बातें हैं, आर्त रौद्र ध्यान से हम बच सकते हैं, पाप के बंधन को कैसे रोके ये समझा जा सकता है, और पढ़ते पढ़ते पाप कर्म का बंध तो रुकता ही है। उसको 2-2 रुपए दे करके रोज 2-2 रुपए गुप्त दान में डाल दो धर्म को और पढ़ो 10 पेज पढ़ो और 2 रुपए डालो, देखो 2 रुपए से भी पुण्य लग रहा है, 1 घंटा समय चला गया उसमें भी पुण्य लगा, और कोई भी किसी भी प्रकार का पाप कर्म का बंध नहीं हुआ ये लाभ हुआ, और उल्टा पुण्य कर्म का ही बंध हुआ ये भी लाभ हुआ। इसमें लाभ ही लाभ है, ऐसा क्यों ना किया जाए। अपनी दैनिक चर्या को थोड़ा सा चेंज करना है, पढ़ना नहीं छोड़ना, पढ़ना ही 1 घंटा छोड़ना नहीं, मन मानता नहीं है लेकिन सकाल की जगह, सकाल की जगह सकाल शास्त्र को 1 घंटे पढ़ना समय पर, सकाल समय आने पर ठीक उसी समय में, सकाल नहीं पढ़ेंगे हम उसी समय में शास्त्र निकालेंगे, जिनागम प्रवेश 10 पेज पढ़ेंगे आज। क्या ये नहीं हो सकता? संकल्प ले लिए तो हो सकता है, और नहीं लिए तो चल ही रहा है आर्त रौद्र ध्यान की गाड़ी। तो यही विवेक दिया जाता है, विवेक जगाया जाता है, जीवों का विवेक जग गया तो धर्मात्मा बन गया, नहीं जगा तो संसारी बन गया। संसार का परिभ्रमण कभी रुकने वाला नहीं। हाँ सकाल को पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कोई काम में आया कि मुझे आज देखना अनिवार्य है तो उस दिन देखो। कोई विषय देखना अनिवार्य हो गया किसी वस्तु का तो उस दिन देख लो। आपका मेजर वस्तु उसमें क्या होता है, मेजर विषय कि हम रोज उसको नियम से पढ़ते हैं, ऐसा क्या है उसमें? भविष्य देखते हैं, वो तो और मिथ्यात्व है। वो तो दर्शन मोहिनी का भी आश्रय होगा उसमें, क्योंकि अपने पाप पुण्य पर विश्वास नहीं है और पेपर में भविष्य पढ़ रहे, लाभ क्या है? हमारा भविष्य उस पर डिपेंड नहीं कि आज के भविष्य जो आया है उसके अनुरूप मैं चलूं। हमारा पाप कर्म का उदय है तो वो होगा ही होगा, और पाप कर्म को टालने वाले कौन है? हम हैं। जहां पर पाप कर्म हो सकते हैं उन पाप कर्मों के निमित्त से बचेंगे तो होने वाला ही नहीं है। उस भविष्य में ये लिखा है कि सकाल पढ़ोगे तो कर्म का बंध होने वाला ही है, तो वही पालन करो ना, पढ़ने की भी क्या जरूरत। सकाल हम पढ़ेंगे ही नहीं है, पाप कर्म से हम बचेंगे तो काय को भविष्य पढ़ना। आज के भविष्य में हम पाप कर्म बंधेंगे नहीं, पुण्य कर्म ही बांधेंगे, और पिछला जो पाप कर्म का उदय है उससे कुछ अब अशुभ घटना घटने वाली है तो उससे हम बचेंगे, परिणामों को ठीक रखेंगे, पुरुषार्थ में रखेंगे, तो पाप कर्म का फल मिलेगा ही नहीं। पाप कर्म का उदय आया है और वो आकर के टल जाएगा, ऐसा कई बार होता है। मान के चलो आपने पिछले भव में कर्म बांधा था, ऐसा कर्म कि दूसरे के साथ आपने एक्सीडेंट किया था जानबूझकर, तो पाप कर्म तो बंधा। अब इस जन्म में वह उदय में आया है, अब हमसे भी कोई एक्सीडेंट करने वाला मिलेगा और हमारे भी हाथ पांव टूटेंगे, और आज वह दिन आया है कि आज के दिन एक्सीडेंट होने वाला है। पेपर में देख से पता नहीं चलेगा, ये पुरुषार्थ से पता चलेगा कैसे करना। आज वह दिन है, एक्सीडेंट होने वाला था, भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान आपकी पूजा में लगा रहूंगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे परिणाम स्वाभाविक रूप से एक दिन हो गए और भगवान की पूजा दर्शन करने के लिए आप निकल गए, और वह टाइम पूजा के बाद आने वाला था एक्सीडेंट का। आपने पूजन किया भगवान का और विचार आया कि पूजन तो कर लिया, बहुत अच्छा लग रहा है, आज थोड़ा प्रवचन भी सुन लूं, तो प्रवचन में आकर के बैठ गए तो प्रवचन भी अच्छा लगने लगा। पाप कर्म का उदय आया, समय पर आया, वो चला गया, आप प्रवचन सुन रहे थे, एक्सीडेंट से बच गए। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं तो ये पेपर देखने से होगा क्या? हम अच्छे कामों में हैं तो बुरे जो कर्म रहते हैं उदय में आकर के फल दिए बिना जाते रहते हैं। वो समय आया था, अगर आप बाहर निकलते तो रास्ते पर ही एक्सीडेंट होने वाला था, और निकले नहीं। भाव हो गए कि एक घंटा प्रवचन सुन लूं, और वह टाइम आ गया, चला गया, फल दिए बिना गया। ऐसे कितने ही पाप कर्म हमारे लिए फल दिए बिना चले जाते हैं, परंतु कब? जब हम अच्छे कार्यों में रहेंगे, धार्मिक कार्यों में रहेंगे, अच्छे भावों में रहेंगे, सावधानी से कोई काम करेंगे। मान के चले प्रवचन नहीं सुन रहे थे और भगवान का पूजन ही मात्र कर करके निकल घर को निकल रहे थे, एक्सीडेंट होने वाला था लेकिन फिर भी बच गया, क्यों? आप सावधान थे, बहुत सावधानी से चल रहे थे, प्रमाद छोड़ करके चल रहे थे। तो जब अप्रमत्त रहते हैं आप, उस समय में भी पाप कर्म का फल नहीं मिलता। देख करके चलेंगे तो जीव बचेंगे, देख करके नहीं चलेंगे तो जीव मरेंगे, ये होता है कि नहीं? ये भी एक एक्सीडेंट है ना, पर ये एक्सीडेंट किस कारण से हुआ? प्रमाद होने से। प्रमाद होने से। अप्रमाद रहना चाहिए, अप्रमत्त रहना चाहिए। तो अप्रमत्त बनकर के हम चल रहे हैं तो पाप कर्म का बंध भी नहीं होगा और जीव भी नहीं मरेगा। अपने पांव के नीचे एक जीव दब करके मरता है तो हम एक्सीडेंट नहीं समझते, लेकिन वह जीव तो समझता होगा ना, मेरा एक्सीडेंट में ये घायल हो गया, मेरे हाथ पांव टूट गए, वो तो सोचता है ना। हम कहां सोचते हैं? सोचना चाहिए कि नहीं? सोचना चाहिए। जैसे हमारे ऊपर से एक गाड़ी निकल गई तो एक्सीडेंट समझते हैं, लेकिन चींटी के ऊपर हमने पांव रखा तो चींटी के साथ हमारा एक्सीडेंट हुआ है ये नहीं समझते? समझना चाहिए, बहुत एक्सीडेंट। क्योंकि ये एक्सीडेंट क्यों हुआ? मैं प्रमाद में था इसलिए एक्सीडेंट हुआ, इस एक्सीडेंट से मैं भविष्य में बचूंगा, ये संकल्प, ये प्रत्याख्यान है, ये आत्मनिंदा, आत्मग्रह, आलोचना, फिर प्रतिक्रमण, फिर प्रत्याख्यान, फिर कायोत्सर्ग, ये सभी विधान बताए गए। एक्सीडेंट होने पर इतनी सारी चीजें करनी पड़ेगी। क्या? आत्मनिंदा लगना चाहिए कि बहुत बड़ा गलत किया हमने, ये पाप हुआ। लगना चाहिए कि हमने दिन भर आज सावधानी के बिना सारे काम किए, हम व्रतों को ही भूल गए। व्रत हो भी या नहीं भी हो, प्रमाद छोड़कर चलने में कोई हानि है क्या? अप्रमत अवस्था ही तो धर्म है। आप उसको एक मिनट भी कर लो तो भी फायदा है। आप वृत्ति नहीं है, अवृत्ति है, प्रतिमाधारी नहीं है, असयम अवस्था में, लेकिन दया भाव से आप यदि सावधानी के साथ एक मिनट पांच मिनट भी देख करके चल रहे हैं तो क्या पाप कर्म का बंध हुआ? नहीं, बंध ही नहीं हुआ, बंध से बच गए। उस समय जो बंध होना चाहिए वो बंध नहीं हुआ। तो धर्म प्रति समय अपने परिणामों में है, अपनी चर्या में है। कोई भी काम करने के लिए कोई भविष्य देखने की जरूरत नहीं। काय को देखते टाइम खराब करते पेपरों में, वो सब भविष्यवाणी पढ़ करके। वो लिखने वाले भी क्या सर्वज्ञवाणी है क्या, सर्वज्ञ भगवान है क्या, जो आपके भविष्य को उन्होंने बता दिया और आपका इष्टानिष्ट होगा? सब अनुमान से चलते, सब अनुमान ही रहता है ना। आपको पढ़कर के भी विश्वास कहाँ रहता? पक्का विश्वास नहीं रहता आपका, लेकिन फिर भी देखने की आदत होती है। हाँ हाँ, अब दो पेपर आ गए, एक पेपर में ऐसा लिखा है, एक पेपर, तो ये सर्वज्ञवाणी दो तरह से कैसे, और आज की भविष्यवाणी दो तरह की, क्या सत्य हो सकता है? वो कोई जरूरत नहीं। देखो राम का वो सुना है कि नहीं, पट्टाभिषेक की घटना, कितने ऋषि महर्षियों ने मिलकर के पट्टाभिषेक के लिए शुभ मुहूर्त निकाला और निश्चित किया। सब कुछ निश्चित करने के बाद भी एक रात में सब इतिहास बदल गया, मुहूर्त ही बदल गया। जिस मुहूर्त पर, यानी शुभ मुहूर्त पर, वो शुभ मुहूर्त कहाँ का? पुस्तक का, पुस्तक का शुभ मुहूर्त। क्या हुआ? कर्म कहता है मेरा शुभ मुहूर्त अशुभ मुहूर्त अलग हैं, तुम पुस्तक का शुभ मुहूर्त फिक्स कर रहे हो, सावधान। मैं उसके अनुरूप नहीं चलता, मैं अपने अनुरूप चलता हूं। और ऐसा अशुभ कर्म का उदय कि सुबह सुबह तक उनको वनवास जाना पड़ा। मुहूर्त फेल हो गए। शास्त्र के मुहूर्त तो फेल ही रहते हैं, कभी पास नहीं होते। लेकिन कदाचित उस शुभ मुहूर्त में आपको अच्छा भी हुआ तो ये मत समझना कि उसके वजह से हुआ, वो तो कर्म के वजह से हुआ है, कर्म के वजह से होता है। और हम समझ बैठते हैं, हमको गलत फहमी होती है कि इससे हुआ। तो ये लोक मूर्ता, ये सम्यक दर्शन का दोष है। और सम्यक दर्शन का दोष है, लोक मूर्ता है, तो हम पढ़े ही क्यों उसको? अब जिस दिन भविष्यवाणी पढ़ेंगे उस दिन लोक मूर्ता के दोष लगवाएंगे अपने व्रतों में, अपने सम्यक दर्शन में, क्योंकि उसको मानते हैं, विश्वास है उसमें। और ऐसा भी विश्वास नहीं कि ठोस विश्वास हो, उसमें भी लुड़बुड़, इधर भी और उधर भी, विश्वास के साथ भी नहीं। ठोस विश्वास भी तो नहीं आपका, क्या है? और अनुमान से चलते हैं, ऐसा तो लिखा था, आज ये काम करूं क्या नहीं करूं, अनुमान से, अनुमान से। अब करते भी हैं, सक्सेस हो गया, अरे यार वो थे, हमारा काम तो सफल हो गया, आज की भविष्यवाणी तो अच्छी निकली, उस पर और विश्वास दृढ़ होता है भविष्यवाणी पर। और ये दृढ़ होना लोक मूर्ता है, दोष लगता है इसमें। किसमें दोष लग रहा है, किसमें दोष लग रहा है? सम्यक दर्शन में, मूल में, जड़ में ही, जड़ ही खोदना शुरू कर दिया उसने। अब फिर चारित्र का दीवाल बचेगा कैसे? चारित्र तो दीवाल है, सम्यक दर्शन फाउंडेशन है, और वही कमजोर हो गया तो फिर चारित्र कार्यकारी नहीं रहेगा। कोई मुहूर्त मुहूर्त की जरूरत नहीं, सभी मुहूर्त ठहराव करके रखा है अपने कर्मों ने। पुण्य कर्म कहता है जब कभी भी कर लो मैं हूं, अमावस्या के दिन भी कर लो या शनिवार के दिन भी कर लो, मैं साथ हूं, तुमको अनिष्ट होने नहीं दूंगा। समय का प्रतिपल प्रति घड़ी आपके लिए शुभ है, चलो करो काम, पुरुषार्थ करो, डरो मत, जो न का पुरुषार्थ करा, मी बोग तो काय हो। कर्म अपने मुहूर्त को फिक्स करके रखे, लेकिन देखो तो सही, भगवान कहते हैं इन कर्मों के मुहूर्तों को भी फेल करने की शक्ति आपके पास है। पुस्तक तो छोड़ो, वो तो लोक मूर्ता की बात है। जो असल में पाप कर्म को फल, पाप कर्म उदय में आकर के फल दे सकता है, उसको भी टालने की, उस मुहूर्त को, उस घड़ी को भी टालने की शक्ति आपके पास है। क्योंकि कर्मों का उत्कर्षण अपकर्षण उदीर्णा इत्यादि होना आपके हाथ में है, ये किसी दूसरे के हाथ में नहीं। और यदि कर्म का उत्कर्षण अपकर्षण नहीं भी होता है और समय पर उदय में आकर के अनिष्ट फल देने वाला है, तो भी सोचो उस घड़ी में आप अच्छे काम करने में लग गए और सदा अच्छा काम ही कर रहे हैं, तो पाप कर्म आपको फल नहीं दे सकते। हो सकता है बहुत बड़ी दुर्घटना घटने वाली थी और आपको वैराग्य हो गया और उसी दिन मुनि दीक्षा ली, तो दुर्घटना से बच गए। गाड़ी में ही नहीं बैठेंगे तो दुर्घटना कैसे होगी? यात्रा ही नहीं करेंगे तो दुर्घटना कैसे होगी? हाँ, ये हो सकता है कि मुनि बनने के बाद भी दुर्घटना हो सकती है, परंतु उस दिन आप विहार ही नहीं करेंगे तो दुर्घटना कैसे होगी? ये भी तो स्वतंत्र वाली बात है ना। ऐसा भाव कर लिया कि आज क्या चल रहा है, वो होली है और लोग होली खेलते हैं और दौड़ते रहते हैं, और किसी दिन और कुछ है, उस दिन गाड़ियां बहुत, ट्रैफिक बहुत रहता है। किस दिन ट्रैफिक ज़्यादा रहता है कोल्हापुर में साल भर में? दीपावली को। दशरे को, दशरे को महाराज से आपने कहा, महाराज ट्रॉफिक बहुत रहता है, आज विहार करना ठीक नहीं है, तो उनके भी भाव बन गए, चलो ठीक है 10 दिन और ठहरेंगे कोल्हापुर में। उनके भी भाव बन गए, आपने भी निवेदन किया, तो दशरे के दिन मान लो अशुभ कर्म के उदय से कोई गाड़ी के टक्कर से मुनि महाराज के साथ एक्सीडेंट होने वाला था, तो बच सकता है कि नहीं? बच सकता है, सब अपने हाथ में। इसलिए कहा है हमेशा अच्छा ही करना चाहिए, अच्छा ही सोचना चाहिए। अच्छा सोचने से अपध ध्यान से बचते हैं। तीसरे नंबर का अनर्थ दंड वृत्ति, अपध ध्यान से बचना हो तो परिणामों को सदा अच्छा रखो, किसी के प्रति बुरा मत सोचना। आपके लिए कोई बुरा कहता है और बुरा विचार करता है कि आप बुरे हैं, ऐसा सोचता है, तो सोचने दो उसको, आपको क्यों चिंता, उसकी चिंता करना ही नहीं, लेकिन आपको उनके प्रति अच्छा भाव रखना चाहिए। जो व्यक्ति बुरे लोगों के प्रति अच्छा भाव रखता है वह अपध ध्यान से बहुत बचता है, बहुत बचता है। ये संकल्प ही लेना कि जो लोग बुरे हैं उनके प्रति मैं बुरा नहीं सोचूंगा, उनके लिए अच्छा हो, उनका हित हो, यही सोचूंगा। ये संकल्प आपको अपध ध्यान से बचाएगा। और इसमें जरा कम पड़ गए तो जितने समय के लिए आप कम पड़े थे उतने समय के लिए पाप कर्म का बंद हो ही गया। सोच के चलना है, हम अपना भविष्य अच्छा चाहते हैं तो वर्तमान का भविष्य अच्छा चाहिए, यानी पुरुषार्थ अच्छा चाहिए। आपके वृत्त ही आपके भविष्य हैं, उज्जवल भविष्य, और वर्तमान में आपकी पाप की प्रवृत्ति ही भविष्य का दुर्भाग्य। भविष्य में दुर्भाग्य भी आ सकता है और भाग्य भी आ सकता है, लेकिन वर्तमान के अनुरूप आएगा। आज जो हम बीज बोएंगे वो कल के दिन काटेंगे। आज आम का बीज बोया तो फल खाएंगे और इतना बड़ा पेड़ हो जाएगा कि वो 500-900 फल देगा। पूरी गर्मी में फल देने को खाने को मिलेंगे। हाँ, नहीं, पुरुषार्थ उधर करेंगे तो वो होगा, अगर नहीं करेंगे तो वो टल सकता है क्या? नहीं, मालूम का सवाल नहीं, वो टल सकता है क्या? नहीं। अकस्मात मान लो आप रेलगाड़ी में नहीं गए तो एक्सीडेंट से बचे, तो पाप कर्म का जो उदय आया था वो फल दिए बिना चला गया। कहने का तात्पर्य है कि हमको अपना भविष्य मालूम नहीं रहता, नहीं होते हुए भी हमारे परिणाम, हमारा पुरुषार्थ प्रमाद रहित चल रहा है तो भी टल सकता है, वो प्रमाद रहित हो रहा है तो भी टल सकता है, और प्रमाद सहित है तो टलेगा नहीं, उसका फल मिलेगा। हाँ, ऐसी कुछ घटनाएं संदर्भ अलग होते हैं, जैसे आप रेलगाड़ी में बैठी हैं और उस दिन रेलगाड़ी का ही एक्सीडेंट होना था, तो बैठने के बाद तो कुछ नहीं कर सकते, बैठने के बाद कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जंजीर आपके हाथ में नहीं, और क्योंकि हमारा भविष्य मालूम नहीं है, तो भविष्य मालूम होता तो जंजीर में खींच लेते, इतने लोग बचते, आप अकेले नहीं बचने वाले हैं, बहुत से लोग बचने वाले हैं, लेकिन उसका भविष्य किसको मालूम, ये पुस्तक भी नहीं बता सकता, सकाल वे भी नहीं बता सकता। सकाल पढ़ करके गए थे और एक्सीडेंट हुआ, और सकाल में बताया था कि इस टाइम में आपको शुभ यात्रा करने के लिए परमिशन है और कर सकते हैं, और उसी मुहूर्त पर गए थे, फिर भी एक्सीडेंट हुआ, और केवल आपके प्रति अनिष्ट नहीं हुआ, हजारों लोगों के प्रति अनिष्ट हुआ। ये क्या, मुहूर्त ने क्या किया? यहां सामुदायिक जीवों का, सामुदायिक पाप कर्म का उदय और उसका फल मिलता है सामुदायिक। हाँ, अचेतन जड़ है लेकिन कर्म को सर्वथा जड़ नहीं माना, उसको चेतन भी कहा। कर्म कथनचित चेतन है, कथनचित अचेतन है, ये अनेकांत है। सर्वथा अगर अचेतन होता तो हमको कुछ नहीं कर सकता था, वो चेतन है इसलिए हमारे लिए सब कुछ कर रहा है। वही को तो सब कुछ कर रहा है, पाप के और पुण्य के फल को दे करके जीव को सुख दुख उत्पन्न कराने की शक्ति उस कर्म में है, तो इसकी उसकी चेतनता है। जब हम उसको लेकर के हर्ष विषाद में डूब जाते हैं, सुख दुख में डूब जाते हैं, तो उसने अपनी चेतना से हमको प्रभावित किया, अपनी चेतना से हमको प्रभावित किया, सुख दिया या तो दुख दिया, निकल गया, ये उसकी चेतनता। जब तक द्रव्य कर्म के रूप में जीव ढलता नहीं, उसके उदय के प्रभाव को स्वीकार करता नहीं, तब तक उसकी चेतनता की, उसकी शक्ति के फल को जीव भी नहीं भोगता। पर उसमें सुख दुख रूप शक्ति को चखाने की शक्ति, सुख दुख उत्पन्न कराने की उसमें शक्ति है, इसलिए चेतन। और शक्ति नहीं है तो अचेतन। पर उसका उपयोग किए बिना और उसका फल पाए बिना उसकी शक्ति का पता नहीं लगता, और प्रति समय जो पता लग रहा है ये कर्मों की शक्ति का ही परिणाम है। जैसे आप मनुष्य बने हैं, मैं मनुष्य हूं ऐसा कुछ अनुभव होता है कि नहीं? ये नाम कर्म है, नाम कर्म ऐसा अनुभव करा रहा है और हम अनुभव कर रहे हैं। हम मनुष्य गति के मनुष्य हैं, देव पर्याय की अनुभूति हमें नहीं है, मनुष्य पर्याय की अनुभूति हो रही है। तो मनुष्य पर्याय की जो अनुभूति है वो आत्मा के साथ घटित हो रहा है क्या नहीं, और देवायु का, देवगति का और देवायु का भी बंद हुआ है लेकिन उदय में नहीं आया। अब वो देवगति में जाने के बाद ही फल देगा, देव पर्याय में शरीर को दिला करके फल देगा, अनुभव कराएगा, लेकिन वो उदय में अभी आया नहीं। जब हम देव पर्याय में जन्म लेंगे, वहां जाकर के जब ये देखेंगे कि हाँ हम देव हैं, तो देवत का अनुभव कराएगा वो। कर्म जब तक उदय में नहीं आता और फल नहीं देता तब तक उसकी चेतनता पता नहीं चलती, उसमें भी चेतनपना है। चेतन को चेतन भी स्वीकार किया है, अचेतन भी। ये अपध्यान तीसरा है। निष्प्रयोजन किसी के जन्म मरण हार जीत लाभ हानि का चिंतन करना, बैठे बैठे किसी का, किसी व्यक्ति को लेकर के कि वो कैसे, देखो कैसे पागलपन का काम करता है, देखो कुछ समझता ही नहीं है, किसी व्यक्ति को लेकर के चर्चा करना, व्यर्थ टाइम गमाना, क्या मतलब है? वो पागल हो या होशियार हो, आपको क्या लेन देन उनसे? आप अपना सोचो, उनकी चर्चा व्यर्थ क्यों? वो हमारी चर्चा नहीं कर रहा है लेकिन हम उनकी चर्चा में पड़े हैं, बेमतलब, ये अनर्थ दंड। अनर्थ ही किसी के संबंध में भला बुरा सोचते हुए बैठना, ये अनर्थ दंड है, इससे बचना। भगवान के संबंध में सोचो ना, बहुत अच्छा है। किसी व्यक्ति को लेकर के हर्ष विषाद करते हुए उसके संबंध में ज्यादा विचार करते हुए बैठना व्यर्थ है। भगवान के संबंध में सोचो, भगवान कितने बड़े हैं, गुणवान हैं, उनके गुणों का चिंतन करो, तो इससे इष्ट ही होगा, अनिष्ट कभी नहीं होगा। आपको भगवान का जाप देने के लिए बताया जाता है, ध्यान करने के लिए बताया जाता है, ये सब व्यर्थ है क्या? व्यर्थ नहीं। इनके चिंतन से, इनके जाप से हम पाप कर्मों का संवर करते हैं। पाप कर्म के बंध से उतने समय के लिए हम रुक जाते हैं, रुक जाता है पाप कर्म का आश्रय और बंध। लेकिन अन्य संसारी जीवों को लेकर के चिंतनशील हैं, अपध ध्यान कर रहे हैं तो आर्त ध्यान हो रहा है, आर्त ध्यान होते समय तो पापाश्रव होता ही। हाँ, उनका भी चिंतन करो, लेकिन सावधानी के साथ। क्या सावधानी? आर्त रौद्र ध्यान से बचकर। उनको इष्टानिष्ट कहते हुए नहीं, धर्म की दृष्टिकोण से, तत्व की दृष्टिकोण से किसी को भी सोचो। जैसे ईरप्पन्ना मर गए, पेपर में आया, आप सोचते कैसे? ये बहुत अच्छा रहा, बहुत दिन से मरा नहीं था वो, परेशान कर रहा था देश में, एक ऐसा डाकू मर गया, अच्छा रहा। क्या मिला आपको? पाप मिला। अगर उसी विषय को पढ़ करके, सुन करके, देख करके यदि ऐसा सोच आता कि बेचारा ईरप्पन्ना मर गया, चोरी छोड़ता तो कितना अच्छा था। चोरी छोड़ करके जीवन सुधार लेता तो कितना बढ़िया होता, लेकिन बेचारा मर गया, ऐसे विचार आ गए, तो इसमें पुण्य बंधेगा क्या पाप बंधेगा? पुण्य बंधेगा। संसार की ही वस्तु है जो हमारे लिए पुण्य बंध का भी कारण बन सकता है और पाप बंध का भी कारण बन सकता है। तो विचार कैसे रखना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है, यही अप्रमत्त अवस्था है। किस वस्तु को देखकर किस दृष्टि से सोचना, दृष्टि को फेरो। दृष्टि के फेर में साधना है। दृष्टि बदल गई तो सृष्टि बदल गई, दिशा बदल गई तो दशा बदल गई, कहते हैं ना, तो यही करना है। हमारी दशा बदल जाए, जो हम गलत हैं उस दशा में हैं, जिस दशा में, वो दशा बदल जाए और दृष्टि बदल जाए, सोच की शैली बदल जाए, और वो बदल करके उसके संस्कार आ जाए, वे संस्कार दृढ़ हों, प्रति समय चले अच्छे संस्कार, अच्छी सोच निरंतर करेंगे तो संस्कार भी आते जाएंगे और वो दृढ़ बनेंगे। हम होना तो चाहते हैं अच्छे, लेकिन कार्य में रहते हैं कच्चे। हमको जैसा होना है वैसा सोचना चाहिए, सोच भी उसके अनुकूल होना चाहिए, तो ऐसा हो सकते हैं। भविष्य का भाग्य हमारे हाथों में लिखा रहता है, हम ही लिखते जाते हैं, वर्तमान में लिखते हैं और भविष्य में आता है वो, इधर लिख लिख करके छोड़ देते हैं, उधर लौट करके वह पत्र अपने सामने ही आता है, देख लेते हैं, अरे ये तो हमारा ही लिखा हुआ पत्र है। गलत हो तो बहुत अच्छा लगता है क्या? नहीं, गलत हो तो बहुत बुरा लगता है, अच्छा हो तो बहुत अच्छा लगता है, कितना अच्छा पत्र लिखा हमने, हमने कुछ ना कुछ पुण्य कर्म किया है तभी तो ये फल है सामने, ऐसा खुशी होती है क्या? नहीं। तो पूर्वों में प्रमाद छोड़कर कुछ व्रत पालन किया होगा, कुछ जीव दया का पालन किया होगा, सोच को बदला होगा, दृष्टि को बदला होगा, भावों को सुधारा होगा और उसको निरंतर शुभ में रखने का प्रयत्न किया होगा, उसका ही तो फल है आज। चौथा प्रमादचर्या, एक एक दो रह गए। निष्प्रयोजन पृथ्वी खोदना, पानी बहाना, बिजली पंखा चलाना इत्यादि इत्यादि, एक नहीं दो नहीं ये हजारों हैं। संसार में जब भी जो कुछ भी करते हैं उसमें ये प्रमादचर्या कब होती कब नहीं होती सावधान रखना चाहिए, किस समय में हो सकती है। निष्प्रयोजन ही पृथ्वी खोदते हुए बैठे हैं, एक पत्थर ले लिया और खोद रहे हैं। क्यों खोद रहे हैं? नहीं बस हाथ पांव चुपना चुपचाप नहीं बैठ सकते इसलिए खोद रहे हैं। चुप नहीं रह सकते, हाथ पांव को कुछ ना कुछ करने का चाहिए, तो कर रहे हैं। हाथ पांव कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं कहीं भी जा रहे हैं। क्यों? बस जा रहे हैं बस, तो अनर्थदंड है। कुछ उद्देश्य तो हो, घूमने के लिए जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? टाइम पास करने के लिए नहीं, स्वास्थ्य सुधार हो इसलिए जा रहे हैं, तो पाप कर्म का बंध नहीं है। पर व्यर्थ जा रहे हैं और टाइम पास मन नहीं लग रहा है, टाइम पास करने जा रहे हैं तो ठीक नहीं। इस मन को कहीं भी लगाया जा सकता था, तो शरीर के लिए तो व्यायाम देना पड़ेगा ना। शरीर के लिए तो ऐसा नहीं सोच सकते कि बैठे बैठे ही व्यायाम कर लेते तो हो जाता था। नहीं, थोड़ा सा ऑक्सीजन खा करके आ गए यहां तक तो ठीक है, लेकिन मन को बहलाने के लिए आप घूमने चले गए, क्या जरूरत है? एक शास्त्र लेके बैठो, पारस चैनल खोल कर के प्रवचन सुनने बैठो, कैसे कहां जाएगा मन देखते। बचने के मार्ग घर में ही, लेकिन मन कहता है पारस चैनल में तो ऐसा वैसा देखने को नहीं मिलता, उसमें बिल्डिंग वगैरह कुछ नहीं रहते, इधर उधर देखने को नहीं मिलता, तो ये तो मनोरंजन है। मन मनोरंजन वाली वस्तु को ज्यादा चाहता है, ये कुसंस्कारित है अनादिकाल से, अच्छी चीजों को नहीं चाहता, बुरी चीजों को चाहता है। मनोरंजन भी चाहिए तो इंद्रिय विषयों के चाहिए, धार्मिक नहीं चाहिए। धार्मिकता में भी तो मनोरंजन है ना। शोक है आपको, क्या शोक है? पारस चैनल में प्रवचन सुनना शोक है, सुनो ना, ये भी तो शोक है, ये भी तो मनोरंजन है, लेकिन ये शुभ है। बचो पाप से, शुभ ज्यादा करो, अशुभ से बचो। प्रमादचर्या, ऐसे पृथ्वी खोदना, पानी बहाना, ढोलना पानी को, ज्यादा खर्च करना, ये प्रमादचर्या है। और बिजली पंखा आदि चलाते रहना, तो ये है, यहाँ लाइट है, दिन में भी जल रहे हैं, जीरो बल्ब, और करंट तो खाते हैं, बिजली गई और माइक भी बंद हो गया, क्यों? सभी करंट इसने खा डाला और डिस्चार्ज हो गया वो, तो क्या जरूरत है? तुरंत ध्यान में आ जाना चाहिए कि करंट गया तो क्या करना चाहिए, ये सावधानी है। करंट को भी बचा लिया, अपना धार्मिक कार्य भी हो गया, नहीं तो उस तरफ ध्यान नहीं देने से धार्मिक कार्य से वंचित रहना पड़ेगा, ऐसा होता। पानी बहाना, बिजली पंखा आदि चलाना, ये किस में आएगा? प्रमादचर्या। दुश्रुति, चित्त को कलुषित करने वाले अश्लील साहित्य को पढ़ना, गीत नाटक सिनेमा इत्यादि देखना, ये इंद्रियां हैं। इंद्रियां विषय भोग को चाहती हैं, पर इंद्रियां नहीं चाहती, हम ही चाहते हैं। इंद्रियां तो जिधर लगाओ उधर काम करती हैं, वो तो घोड़े के समान है। घोड़े को लेकर के तुम तीर्थ यात्रा करो तो घोड़ा तीर्थ यात्रा के लिए निकलता है, घोड़े को लेकर के हाँ रेस करोगे तो रेस के लिए निकलता है, घोड़े को लेकर के पिक्चर देखने के लिए निकलोगे तो पिक्चर देखने के लिए निकलेगा। तो घोड़े का मालिक पर डिपेंड है कि घोड़े पर डिपेंड है? तो उसी प्रकार हमारा मन तो घोड़ा है और हम आत्मा हैं। आत्मा की इच्छा जिधर होती है उधर मन काम करने लगता है। तो आत्मा को सोचना चाहिए कि मुझे क्या करना है, किधर ले जाना है मन को। तो जिसमें इंटरेस्ट उधर ले जाता है ये, तो इंद्रिय विषयों का संस्कार होने से इंद्रिय विषय ही चाहता है मन, पर मन के उस प्रवृत्ति को रोकने के लिए उसको भी तो संस्कारित करना पड़ेगा। घोड़े को बाहर छोड़ दिया तो उधर ही चला जाता है जिधर आप रोज ले जाते थे, रेस के लिए निकल गया वो, कहे बिना और खींचे बिना सीधा वहीं गया, ग्राउंड में गया। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, आज के दिन तो तीर्थ यात्रा करना है, बाबुल कुंभोज होकर के आना है। तो ये बार बार आप घोड़े को ये संस्कार देंगे कि कुंभोज जाना है, तो घोड़ा भी बराबर कुछ दिन बाद आपको कुंभोज ही ले जाएगा। लगाम लगाए बिना कुंभोज जाओगे, रंकाल घूमने जाते हैं ना घोड़े को लेकर, तो रंकाल ये तो काल दुश्रुति, चित्त को कलुषित रखने वाले अश्लील साहित्य को नहीं पढ़ना चाहिए, और गीत नाटक सिनेमा इत्यादि को इंद्रिय विषय भूत इन विषयों से दूर रहकर मन को अच्छे विषयों को देकर अच्छे संस्कार डालना चाहिए। दोनों प्रकार के विषय संसार में हैं, अच्छे विषय भी हैं बुरे विषय भी हैं। बुरे विषयों में लगाएंगे तो बुरा होगा, अच्छे विषयों में लगाएंगे तो अच्छा होगा। जिनवानी प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रित जो शीतल वाणी जग जन मन के मल को धोती अतः कहाती जिन वाणी जय वंतो मां जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे शीश नवाते कर्म हरो मां अब तक हम विषयांद रहे अब ना हम विषयांद रहे।